والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنے رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان مبارک کے لیے سجائی جاتی ہے اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار عز و جل اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک میں جو جملہ لکھا گیا کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے اس کے تحت بڑی پیاری بات فرماتے کہ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی عید کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے اور سال بھر یہ فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں اب ذرا تصور کریں مدنی چینل کے ناظرین بھی ان باتوں کا ایک تصور باندھیں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی جنت اگلے رمضان کے لیے سجنا شروع ہو جاتی ہے اور کون سجاتا ہے فرشتے اسے سجاتے رہتے اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جنت خود سجی سجائی और फिर और भी ज्यादा सजाई जाए, और फिर सजाने वाले ये फरिश्ते हों तो फिर सजावट कैसी होगी। अल्लाह अकबर, ये हमारे वेमो गुमान से भी भरा है। फिर फरमाते कि बाज मुसलमान ये मस्जिदें सजाते हैं, वहां कलई चूना करते हैं, झंडियां लगाते हैं, रोशनी करते हैं, उनकी असल यही हदीस है। यानी कुछ हमें भी याद पड़ता है, जो एक मजहबी घराना होता है ना, जिसमें कुछ दीन की कुछ रगबत होती है, तो याद आता है कि छोटे छोटे जब थे तो रमजान के आने पर घरों की भी सफाइयां होती थी। मुझे तो याद है, मुझे याद है कि घरों की सफाइयां होती थी, रमजान आने वाला है। यानी खास एहतिमाम कि भाई किसी की आमद है, कोई खास इवेंट आ रहा है, कोई खास अहमियत हो रही है। और अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले आका का महीना जो शाबानुल मुअज्जम के फजाइल पर लिखा है, उसमें सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के मामूलात लिखे हैं कि ये जो कारोबार वगैरह करते थे, जिससे लेना होता था ले लेते, जिसको देना होता था दे देते थे, गोया माह रमजान के आने से पहले दुनियावी मामलात में फारिग हो जाते थे और रमजान का चांद नजर आते ही एतिका में बैठ जाया करते थे। ये रमजान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये माह रमजान आने वाला है, ये माह रमजान आने वाला है। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हम जिंदगी में ना जाने कितने माह रमजान गुजार चुके हैं। जी हाँ, जिंदगी में बहुत, जिंदगी जैसे अगर किसी के 50 साल है तो 50 माह रमजान वो गुजार चुका, 40 साल है तो 40 रमजान गुजार चुका। ये महीना भी आएगा, आकर ये भी गुजर जाएगा, मगर क्या कभी कोई ऐसा बैलेंस किया, कुछ सोचा कि यार ये क्या हुआ भाई? इतने फजाइल तो सुनते ही रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा वतन है तो इसकी एक बरकतें ये भी हैं कि जाहिर है हम ये सुनते रहते कि भाई ये महीना आ रहा है, और फिर हमारे वतन में खुसूसियत के साथ मस्जिदों की रौनकें बढ़ जाती हैं, और जो शहर होते हैं तो उनमें खासकर ये इफ्तार का और खास एहतमाम होता है। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम इसमें चेक करें, कुछ गौर करें कि जिंदगी के इतने माह रमजान आए गुजर गए, हम हो ना हो रमजान ने आना है, माह रमजान ने आना है। तो अब अगर कई ऐसी बातें होती है कि जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनी हुई होती है, हमें इसका पता नहीं चलता है। क्योंकि हम, एक चीज होती है ना कि आदत से मजबूर हैं, तो ये आदत जो है ना, आदत, इसके मुताबिक तहकीक के मुताबिक कि दिन भर में तकरीबन 40% काम हम अपनी मर्जी से नहीं करते, 40% काम हम अपनी मर्जी से नहीं करते बल्कि आदत के मुताबिक करते हैं। अब किसी की आदत सीधे हाथ से लेना देना हो तो उसको आदत बनेगी, कोई चीज मांगेंगे फौरन उसका सीधा हाथ बढ़ेगा, क्यों? कि उसकी आदत बन गई, बैठ के पानी पीना है बैठ के पानी पीने की आदत बन गई। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, बल्कि यहां तक तहकीक के मुताबिक 40% काम हम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करते बल्कि अपनी आदत के मुताबिक करते हैं। और जो आदत हो जाती है, जैसे मिसाल कोई शख्स बिस्तर से उठता है, नींद से बेदार हुआ, अब कोई तो होता है कि बेदार होते ही उठ गया, काम में लग गया, और बाद होते हैं कि बिस्तर से उठने में भी इनको घंटा लग जाता है, बिस्तर ही नहीं छूटता, बल्कि अलार्म लगाते हैं। अब अलार्म लगाते हैं तो अलार्म बज बज के थक जाता है कि भाई उठ, अब तो उठ जा, नहीं बल्कि फिर कि कोई मशवरा देता है कि अरे अलार्म जो ना थोड़ा दूर रखो। बाद अवकात होता है अलार्म करीब ही रखा, हाथ मारा बंद हो गया, उठे ही नहीं, तो किसी ने मशवरा दिया कि भाई अलार्म दूर रखो ताकि ये बिस्तर से उठकर बंद करने जाओगे तो फिर आप समझो बिस्तर से उठ गए। तो ये आदत होती है कि अगर बिस्तर पर लेटे तो लेटे, 9 बजे उठना है, उठ गए आप, बिस्तर कब छोड़ा। तो इसी तरह कई ऐसी कमजोरियां होती हैं कि जो हम अपनी आदत के मुताबिक एक मामला करते हैं और बिल आखिर जब वक्त गुजर जाता है तो अफसोस करते हैं कि काश हम ये भी कर लेते, काश हम ये भी कर लेते। तो ये याद रखिए कि जो कमजोर आदतें हों इसको दूर करना किसका काम होगा। अगर मैं ये कहूंगी मेरी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है। कोई डॉक्टर साहब अगर हमको सीने में तकलीफ हो जाए और डॉक्टर साहब अगर हमको कहते हैं कि भाई आपकी वॉक जरूरी हो गई है, वॉक करना बहुत जरूरी हो गया, अगर वॉक नहीं करेंगे तो ये तो आपकी ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा है और ये आपका नुकसान पहुंचाएगा, उस डॉक्टर साहब के कहे पर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलना दौड़ना हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें नमाजों के एहतिमाम का कहा जाए, कुरान सीखने पढ़ने का मामला करने का कहा जाए, रिस्के हलाल के हुसूल की ही कोशिश करनी है, इसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई जाए, तो अगर बाद औकात होता है यार मैं कर नहीं सकता हूं, यार फजर में मेरी आंख खुलती ही नहीं है। अब फजर में आपकी आंख खुलती नहीं है क्यों कि यार मैं स्टूडेंट हूं, मैं 8 बजे ही उठता हूं, इससे पहले मेरी तरकीब नहीं है। चले जी आपकी ग्रेजुएशन हो गई, अब आपको गवर्नमेंट के किसी ऐसे इदारे में जॉब मिल गई जिसमें 7 बजे पहुंचना है, आप 5 बजे उठेंगे, तैयार होंगे, 1 घंटे का सफर करेंगे, 7 बजे पहुंच जाएंगे आप। अब आपकी आंख खुल रही है, क्यों भाई? आप तो कहते थे कि मैं 8 बजे से पहले उठ ही नहीं सकता था, ग्रेजुएशन करने तक आपने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी और आज आपकी जॉब हो गई, चंद हजार रुपए का आपको इसमें बेनिफिट हासिल होने लगा, आपकी इस मामले में कुछ क्रेडिट बनने लगी, तो आप कहते हो कि अब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मींस आप चेंज हो सकते हैं, आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, बस जरूरत इस बात की है कि किसी तरह हमारी तवज्जो हो जाए। एक नौजवान ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि मैं गुनाहों को छोड़ना चाहता हूं, आप बताएं कि मेरी इस्लाह कैसे हो सकती है। तो उन्होंने फरमाया कि कभी बर्तन धोएं? बुजुर्ग ने पूछा क्या कभी बर्तन धोए हैं? तो उसने कहा जी। तो कहा कि बर्तन हमेशा बाहर से कम अंदर से ज्यादा धुलता है। बर्तन धोए? उसने कहा हां। फिर जवाब दिया कि बर्तन बाहर से कम अंदर से ज्यादा धुलता है। तो अगर हम भी अपने आप को धोना चाहते हैं तो बाहर से तो धुलते ही धुलते हैं, रोजाना धुलते हैं, अंदर की धुलाई कब होगी? जिस दिन ये अंदर की धुलाई हो गई ना हमारे सारे काम सीधे हो जाने। तो हमें बसा औकात जो दुनियावी मामलात होते हैं, जो दुनियावी कैलकुलेशन होती है, उसके मुताबिक तो हमें कोई जेन साजी करने की आदत नहीं होती। बल्कि यहां तक मेरा जाती मुशाहिदा है कि मैंने एक ऐसे शख्स को जो रात को मुख्तलिफ फंक्शंस में गाड़ियां चलाता था, जो उमूमन वैने चलती हैं, एक रात में उनके साथ था, रात के 2:30 बज रहे थे और मैं जानता था कि सुबह ये बच्चों को उठाते हैं स्कूल्स के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि अभी 2:30 बज रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, ये सुबह कब कैसे उठते हैं आप सुबह कैसे उठते हैं जबकि 2:30 बजे आप अभी तक गाड़ी में, ये जो गाड़ी में बैठे इन सबको आप छोड़ेंगे, फिर आप अपने वर्कशॉप जाएंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर सोएंगे। अब आपने सोने के बाद अपने अगले रूटीन के लिए उठना है। मैंने उससे पूछा आप बताएं उठते कैसे, कितने अलार्म आपको लगाने पड़ते हैं उठने के लिए, किस किस को कहना पड़ता है आपको उठने के लिए? आप यकीन माने उसने कहा मैं कोई अलार्म नहीं लगाता, कोई अलार्म नहीं लगाता, किसी को मैं नहीं कहता, मेरी आंख खुद ब खुद खुल जाती है। क्यों? उसने अपने कमिटमेंट को पूरा करना होता है, उसने अपना एक रूटीन बनाया है, उसने अपनी एक आदत बनाई है कि चाहे रात को मैं किसी वक्त भी सोऊंगा, इस वक्त मुझे लाजमी उठकर अपनी जॉब को अटेंड करना है। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि आने वाले रमजान खैर से नेकियों भरा गुजर जाए, इबादत भरा गुजर जाए, रियाजतों भरा गुजर जाए, तो अगर कुछ कैलकुलेशन कर लें, कुछ देख लें कि भाई 40 रमजान गुजारे, 45 रमजान गुजारे, 25 रमजान शरीफ गुजार दिए, वो तो जो गुजरे वो बाद में ही अफसोस होता है, अब तो रमजान आने वाला है, तो हम जायजा लें कि कौन कौन सी ऐसी बातें कि जिसमें मैं मुब्तला होकर अपने वक्त को जाया कर देता हूं, और पिछली मर्तबा किस किस तरह से मैंने अपने मामलात में ये अंदाज अपनाए थे तो कमजोरी रह गई थी। अब जैसे मिसाल, माह रमजान आए, मुझे रोजे रखने, अब रोजे रखने और रोजे रखने इंशाल्लाह रखने है ना, रोजा रखेंगे भी और रोजे रखवाएंगे भी इंशाल्लाह, रोजा रखेंगे रोजे रखवाएंगे इंशाल्लाह। ये इस वक्त की तो बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ये रोजे नहीं रखती। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि माह रमजान के फजाइल पढ़िए। जैसे मैंने एक रिवायत ही सुनाई, तो फैजान रमजान ये अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब है, इसका इब्तदाई पहला चैप्टर है फजाइल रमजान, इस फजाइल रमजान को पढ़िए। ऐसी कई रिवायात हैं कि जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा और बेसाख्ता कहेंगे कि वाह रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है, कि जिसमें नेकियों का सवाब ये बढ़ा दिया जाता है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, रोजा रखने वाला तो इबादत में शामिल हो ही जाता है। उलमा फरमाते हैं कि रोजेदार का सोना भी इबादत में शामिल होता है, सोना इबादत, जो रोजा है वो इबादत, इफ्तार करना इबादत, इफ्तार के बाद तरावी का इंतजार करना इबादत, तरावी अदा करना इबादत, सहरी ये इबादत, यानी हर आन गोया अल्लाह ताला की रहमतों का नुजूल होता है। तो माह रमजान के फजाइल जानेंगे इंशाअल्लाह, रगबत बढ़ेगी नेकियों की तरफ, रगबत बढ़ेगी कि रमजान आने वाला है, इंशाअल्लाह मैं माह रमजान के पूरे रोजे रखूंगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल पक्की नीयत कर लेंगे इंशाअल्लाह, बिला उजरे शरी मेरा एक रोजा भी कजा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अपने घर में भी, अपने घर में भी जहन बना लें, बच्चों का भी जहन बना लें, बच्चों की अम्मी का भी जहन बना लें। हाँ, इसमें बसा औकात हमारे अपने काम काज के रूटीन, हमारी जॉब, हमारा अपना काम, ये टफ होता है, लेकिन देखें तो सही ना, ये साल में एक महीना आता है और ये गुनाहों से पाक करने वाला है, गुनाहों से पाक करने वाला है, यहां तक कि इसकी फजीलत पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को इल्म होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल ही रमजान हो, पूरा साल रमजान हो। ऐसी फजीलतें इस प्यारे प्यारे मुबारक महीने की हैं। तो इस महीने में हमने पूरे रोजे रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब नमाजों का मामला आता है, यानी अव्वलन तो एक बहुत बड़ी तादाद नमाज नहीं पढ़ती। अच्छा, जो नमाज पढ़ती है वो जमात के साथ नहीं पढ़ती, जो जमात के साथ पढ़ती है वो पहली सफ का इतमाम नहीं करती। तो इन तमाम चीजों की एक कैलकुलेशन करें कि यार नमाज जमात के साथ पढ़ना वाजिब है, बिला उजरे शरई जमात को छोड़ना भी गुनाह है। तो अब अगर मैं जमात के साथ नहीं पढ़ता तो इसकी तौबा करें और अपना जहन बना लें, नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह मैं अब पांचों नमाजें जमात के साथ अदा करूंगा। अल्लाह नसीब करे जमात के साथ पहली सफ का इतमाम करें, सवाब की हिर्स अपने अंदर पैदा करें। जिंदगी मुख्तसर है, इस मुख्तसर सी जिंदगी का फायदा उठाना है और मुझे इंशाअल्लाह पांचों नमाजें जमात के साथ अदा करनी है इंशाअल्लाह। क्योंकि इसमें भी होता है कि खासकर रमजान के महीने में और वो भी इब्तदाई दिनों में नमाजियों का रश ज्यादा हो जाता है। तो अब अगर नमाजियों का रश ज्यादा है तो हमें भी जल्दी चला जाना चाहिए, जल्दी जाएंगे ताकि मस्जिद में हमको जगह मिल जाए। तो अब अगर हम मतलब वही रूटीन अपनाए अपने एंड टाइम पे जाने की, ज़ाहिर पे जगह नहीं मिलेगी। तो वैसे भी अहादीस मुबारका में फजाइल बयान हुए किन लोगों के, जो अजान से पहले ही मस्जिद में नमाज के लिए हाजिर हो जाते हैं, कि ऐसे खुश नसीबों के चेहरे सूरज की तरह कयामत के दिन रोशन होंगे। फिर ऐसे लोगों के बारे में बताया गया जो अजान सुनते ही मस्जिद में हाजिर हो जाते, वुजू पहले तैयार करते लेकिन अजान सुनते ही मस्जिद में आ जाते। तो हदीस में बयान हुआ कि ऐसे खुश नसीबों के चेहरे चांद की तरह रोशन होंगे। और तीसरे वो लोग जो अजान सुनते ही वुजू करते और मस्जिद में हाजिर हो जाते, ऐसे खुश नसीबों के चेहरे सितारों की मानिंद रोशन होंगे। तो बहरहाल ये अब हमें चाहिए, हमें सोचना है कि हम कौन सा ग्रेड पसंद करते हैं। दुनिया में तो फर्स्ट A1 ग्रेड चाहिए भाई, मुमताज मां शरफ चाहिए हमको। हम इदारे में काम करते हैं, हम टॉप ऑफ द लिस्ट होने चाहिए, हमें अवार्ड मिलना चाहिए, हमारा अलाउंस होना चाहिए कि भाई ये मैन ऑफ द मंथ है, ये मैन ऑफ द ऑफिस है, ये मैन ऑफ द फैक्ट्री है ये। तो हम दुनियावी तौर पर तो ग्रेड चाहते हैं, उखरवी तौर पर उसमें भी ग्रेड चाहिए, उसमें भी ग्रेड चाहिए कि जन्नत में तो जाना ही जाना है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में भी आका के कदमों में जगह पाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये इसके लिए कोशिश तो होगी ना, इसके लिए कोशिश तो होगी ना, एक काम करना है, गुड है। कहते हैं नहीं हम बेस्ट करेंगे, कहते हैं हम एक्सीलेंट करेंगे, तो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो नमाज का एहतिमाम अगर करना है, माहे रमजान की आमद आमद है, अब से ही तैयारी कर ले और अजान से पहले ही वुजू तैयार हो, अल्लाह नसीब करे तो अजान से पहले ही मस्जिद में दाखिल हो जाए इंशाअल्लाह। फिर देखें आपको तिलावत का भी मौका मिलेगा, आपको औरादो वजायफ का भी मौका मिलेगा, मस्जिद में रहकर आपको एक पुरसुकून माहौल मिलेगा, मस्जिद में आपका दिल लगेगा। यूं माहे रमजान की आमद से पहले ही हम मस्जिद में अपनी जगह बना लेंगे। फिर मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप और गौर करें कि मैं वो कौन से ऐसे अवामिल हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिनके सबब मैं अपना वक्त जाया करता हूं। वक्त जाया करने का जो मामला है ना, ये बदकिस्मती से हमारा बहुत ज्यादा है। हम अपने वक्त की अहमियत को समझते नहीं है, वक्त की अहमियत को समझते नहीं है। बाद बुजुर्गों के बारे में किताबों में लिखा है कि वो रोटी नहीं खाया करते थे, बल्कि सत्तू पीकर, यानी एक पाउडर होता है जिस सत्तू कहते, बड़ा मशहूर है हमारे यहां, तो सत्तू पीकर वो अपनी भूख मिटाया करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि हजरत आप हमेशा ये सत्तू पीकर गुजारा करते हैं, आप रोटी नहीं खाते, इसकी क्या वजह है? तो उन बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने रोटी चबाकर खाने और सत्तू पीकर गुजारा करने में 90 तस्बीहात का फर्क पाया है। यानी जितनी देर में मुझे रोटी चबानी पड़ती है और उसकी बजाय मैं सत्तू पीकर गुजारा कर लेता हूं, तो 90 तस्बीह में ज्यादा पढ़ लेता हूं। इसलिए मैंने 40 साल से रोटी नहीं खाई, ये अपनी जिंदगी का कोई मकसद जानते थे ना कि जिंदगी मुख्तसर है, जो वक्त एक बार आ चुका दोबारा नहीं आएगा। आज जो करना है, सूरज जो तुलू होता है ऐलान करता है कि मुझ में जो आज काम करना है कर लो, आज के बाद मैं दोबारा नहीं आऊंगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी क्या है, यही 3 सांस तो है, एक सांस वो जो उसने ले लिया अब दोबारा नहीं ले सकता, एक सांस वो जो लेगा, कंफर्म नहीं है लेगा कि नहीं लेगा, एक सांस वो जो ले रहा है, जो ले रहा है यही इसकी जिंदगी है, यही इसकी जिंदगी है। तो आज अगर हमारे पास जो भी नेमत नसीब हुई है, वक्त की सूरत, वक्त बहुत बड़ी नेमत है, तो इस वक्त की कदर कीजिए। और फिर देखिए वक्त जाया कहां होता है। नंबर 1 मोबाइल, मोबाइल फोन में वक्त जाया होता है। बाज लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो चूंकि माली माशी तौर पर थोड़े कमजोर होते हैं तो नेट ऑफ रखते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद नेट ऑन करते हैं, तो उनको तो देखा है कि वो थोड़ा सुकून में रहते हैं। जिनका नेट खुला रहता है वो तो ये समझने के हर थोड़ी देर के बाद उनके हाथ में मोबाइल होता है, चेक कर रहे होते, उनके हाथ में मोबाइल होता है, चेक कर रहे होते कोई आया। बल्कि किसी ने एक तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पे वायरल की है, मस्जिद का एक मंजर लिया है, 6-7 नमाजी बैठे, तकरीबन सबके हाथ में मोबाइल है और वो अपने मोबाइल को चेक कर रहे हैं। यानी उसने बड़ा अजीब सा एक जुमला लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि पहले के वक्त में अगर किसी को मस्जिद में देखते थे तो कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई तस्बीह कर रहा है, कोई मुताला कर रहा है, कोई दीनी काम और मसरूफियत है, और यहां देखें तो सबके हाथों में मोबाइल है और वो मोबाइल देख रहे हैं। यानी गोया नमाज सलाम फेरने के बाद अगर यूं कहा जाए कि पहले बंदा हाथ जेब में डालकर तस्बीह निकालता था और तस्बीह पढ़ता था, आज अगर कोई नमाज पढ़ता भी है तो नमाज पढ़ने के बाद जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकालता है, देखो पैगाम तो नहीं है। तो हम अगर अपने इस माह रमजान मुबारक की आमद पर हम सवाब बढ़ाना चाहते हैं तो कोई शेड्यूल बना लें मोबाइल के इस्तेमाल का भी, यार मोबाइल इसी तरह से मुझे इस्तेमाल करना है। बास के इतने कोई जरूरी काम या इतने बड़े बड़े मतलब मामला तो नहीं होते कि जिसको हर वक्त जो अलर्ट रहना ही लाजिम होता है, लेकिन चूंकि माह रमजान में मुझे नेकियां कमानी है और मेरे वक्त को जाया करने में इस मोबाइल का एक बड़ा हाथ है, तो इस रमजान के आने से पहले पहले अपना शेड्यूल बना लें और ये जो दिन है इसमें अपने आप को तैयार कर लें और जहन बना लें कि इंशाल्लाह माह रमजान में मोबाइल भी कम से कम इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह लोगों से गैर जरूरी मेल जोल, ये जो आपस की दोस्तियां होती है ना, ये भी हमारे वक्त को बड़ा जाया करती है और खासकर इसमें हमारा जो दिल लगता है ना वो ऐसे लोगों के साथ दिल लगता है कि जो फजूल बातें करते हो, जो हंसने हंसाने की बातें करते हो, जो खेल कूद की बातें करते हो, जो फिल्मों ड्रामों की माजल्ला बातें करते हो, तो ऐसे लोगों से हमारा मेल जोल ज्यादा होता है और जाहिर है ऐसी गुफ्तगु सुनने से उमूमन दिल में सख्ती भी पैदा होती है। हाँ नेकी की बात बताओ, किसी को कोई चीज दे रहे हैं और वो उल्टा हाथ बढ़ा रहा है, आप देने से पहले अगर उसको कहेंगे प्यारे भाई सीधे हाथ से लेना देना ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, आप इस पर अमल करें ना, वो फौरन अपना उल्टा हाथ हटाकर सीधा हाथ बढ़ाता है। ठीक है, उसको वो नेकी की बात आपने बताई, जब तक वो अमल करता रहेगा आपको भी सवाब मिलता रहेगा। ये कलाम करें ना, ये कलाम करें, लेकिन हमारा कलाम तो बस अजीबो गरीब होता है, हमारा कलाम अजीबो गरीब, इसमें हमारा कोई दीनी फायदा नहीं होता है, बल्कि माजअल्लाह बादों का तो गुनाहों भरी गुफ्तगू हो जाती है, कुफरियात तक जबान से बोली जाती है। इसकी अगर आदत वाकई अच्छी करनी है और आपको एहसास करना है कि यारी फजूल बातें क्या होती है, अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है खामोश शहजादा, इसको एक दफा पढ़ लें, इसको एक दफा पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा कि यार ये तो मैं बड़ी खामा का फजूल बात खामा का। आज यार मौसम बड़ी गर्मी है यार, आज है बड़ी गर्मी, तो भाई आप बड़ी गर्मी है इसे पूछकर क्या आपको क्या फायदा हुआ, ये एक मकान आपने कितने का लिया, भाई क्यों पूछ रहे हैं आपको मकान लेना है, ये गाड़ी कौन से मॉडल की है, इस मोबाइल में कितना मतलब बैटरी कितनी देर चलती है, भाई आपको क्या जरूरत है, आपको क्या, बस वो बात करने को करते हैं, लेकिन अगर हम नेकी की बात बताएंगे नेकी की बात कहेंगे हमें सवाब मिलेगा। तो ये फजूल कलाम, इसकी मारिफत होनी जरूरी है और इसकी आदत बनाने के लिए हमारे असलाफ और बुजुर्गों ने कैसे कैसे मुजाहदे किए। हमारे सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने आपके बारे में आता है कि जबान मुंह में पत्थर रखा करते थे ताकि बोलना ही कम पड़े। किसी ने किसी से सवाल किया कि आफियत किसमें, तो कहा बोलो मत। कहा हुजूर ये तो हो ही नहीं सकता कि बोले नहीं। तो कहा अच्छी बात के अलावा अपनी जबान से कुछ ना निकालो, तो आदत बनाए। क्यों? कि रमजान आने वाला है। कम बोलने की आदत बनाए, दुरूद पाक की कसरत की आदत बनाए, जिक्रुल्लाह करने की आदत बनाए, तो इंशाअल्लाह इसकी खूब बरकतें मिलेंगी। इसी तरह अपने जज्बात पर काबू, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी रमजान का महीना आएगा और रोजा रखा हुआ होगा। अब बस वो कोई खिलाफ मिजाज हमसे बात हो जाए तो अब तो उसको छोड़ना नहीं है। यदि तमाशे होते, घरों से निकलेंगे तो वहां लड़ाइयां हो रही होंगी, महल्ले में होंगे तो पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा होगा, घर में होंगे तो शोहर बीवी पे गरम, बीवी बच्चों पे गरम, वो मतलब मैदान जंग बना हुआ होता है। क्यों? हमने रोजा रखा है। तो रोजा इस बात का नाम थोड़ी कि आप रोजा रख के सबसे लड़ते रहे, नहीं, इसमें तो नरमी लानी पड़ेगी और अपने जज्बात पर काबू पाना होगा, क्योंकि बाद औकात इंसान जानदार होता है, थोड़ा सा रोबदार होता है, थोड़ा सा उसको बोलना ज्यादा आता है, तो ऐसा शख्स समझता है कि मैं सब पर हावी हो जाऊंगा और वो अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम गौर करें और सोचें कि आज अगर हमने अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपने अंदाज से किसी को कुछ तकलीफ पहुंचाई तो कयामत के दिन इनका हिसाब देना होगा। अगर किसी पर ना हक जुल्म किया होगा, हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी को गाली दी होगी, किसी को झाड़ा होगा, किसी को डांटा होगा, किसी को किसी अंदाज से भी तकलीफ पहुंचाई होगी, कयामत के दिन हकदार को उसका हक देना पड़ेगा। और कयामत के दिन हकदार को हक, अगर नामा आमाल में नेकियां होंगी तो नेकियां दी जाएंगी, अगर नेकियां नहीं होंगी तो उसके गुनाह इसके सर डाले जाएंगे। कयामत के दिन हिसाब किताब होगा और इसी दिन के हिसाब किताब के लिए हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन ये डरा करते थे। तो बहरहाल माह रमजान की आमद है, अपने जज्बात पर काबू, अपने जज्बात पर काबू पाना है और नियत करें कि इंशाअल्लाह मैं अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, इंशाअल्लाह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। अगर कोई मुझ पर गुस्सा करेगा भी, नरमी नरमी कि है फला हो कामरानी, नरमी हो आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। बाद औकात घर में लड़ाई होती है, दो भाइयों की किसी बात पर तकरार हो गई, अब दोनों भाई अगर गुस्से में होते हैं तो आपस नतीजा क्या मिलता है? जुदाई, मामला खराब हो जाता है। लेकिन अगर एक नरमी इख्तियार कर ले, खामोश हो जाए, बात ही खत्म हो जाएगी, दूसरे को भी एहसास होता है कि यार मैंने खामा का इसको डांटा था लेकिन इसने मेरे सामने बोला नहीं। पड़ोसी पड़ोसी के बारे में भी ख्याल करें, बाद औकात पड़ोसी मतलब बुरा करते हैं, लेकिन है पता है क्या, किसी ने बड़ी प्यारी बात समझाने के लिए कही कि एक शख्स ने कहीं किराए पर मकान लिया, अब वो जो मकान था बराबर वाला उसमें कुछ चार पांच भाई रहते थे, लेकिन वो सारे लड़ते रहते थे और अड़ोस पड़ोस में रहने वालों को भी बहुत तकलीफ पहुंचाते थे। तो एक दिन उन, और शरारती भी थे वो, तो एक दिन उनमें से किसी ने, वो चार पांच भाइयों में से किसी ने अपने घर का सारा कचरा ये जो नया पड़ोसी था उसके दरवाजे के आगे डाल दिया। अब पड़ोसी ने थोड़ी देर के बाद जब दरवाजा खोला तो सारा कचरा वो तो घर के आगे पड़ा हुआ था, वो अंदर गया, बाल्टी लाया, साफ सफाई कर ली, फिर अपने घर में जाकर उसने, उसके घर में कुछ फलदार दरख्त लगे हुए थे, उसने अपने दरख्तों से फल चुने और उससे अपनी बाल्टी भर ली, और शाम को जाकर उसने दरवाजा खटखटाया पड़ोसियों का। अब वो जो चार भाई थे, पांच भाई जो सबसे लड़ते थे, वो समझे कि ये लड़ने आया है, तैयार हो गए कि ये तो नया है, इसको तो हम पांचों भाई गिरा देंगे। बड़े रोब दबदबे के साथ उन्होंने दरवाजा खोला, तो जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मुस्कुराता चेहरा था, पड़ोसी का, और उसने अपने फलों से भरी हुई बाल्टी उनको पेश की कि हमारे घर में यही था, मैं आपके लिए ले आया। समझाने को समझा गया वो कि मैं चूंकि फलदार हूं, मेरे घर में फल ही फल हैं, तो मैं अपने घर से फल लेकर आया हूं। आप चूंकि लड़ते रहते हैं, आपके घर में कचरा ही कचरा है, तो आपने मेरे घर पे कचरा डाला था। मेरे घर में कचरा नहीं है, मेरे घर में तो फल है, मैंने वो आपको पेश किए। तो अब अगर कोई अपनी जात का कचरा निकालता है तो हम भी तो अपनी जात से फल दे सकते हैं उसको। तो हम अपना अंदाज मीठा करें, हम अपनी मोहब्बतें दें, प्यार देंगे, इंशाअल्लाह इस माशरे में तब्दीली आएगी। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
ईमान ने